नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु में इस बार 5 तरफा मुकाबला होगा। राज्य में 1,18,00,000 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले चुनाव में राज्य में 70-75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के माध्यम से मतदाताओं से अपना मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत असम और पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में असम की प्रगति सबके सामने है और राज्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के कारण लोग डबल इंजन वाली एनडीए सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार ने पिछले 5 वर्ष में पुदुचेरी के लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं। लोकसभा में आज दिवाला शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों के बीच प्रक्रियात्मक विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में समूह ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों को विनियमित करना है। सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल के वितरण की अनुमति दे दी है। विश्व भर में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य सामान्य स्थिति में केरोसिन का उपयोग बंद होने वाले क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना है। 2 और भारतीय एलपीजी टैंकर 94,000 टन एलपीजी के साथ स्वदेश आ रहे हैं। दोनों टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। एक एलपीजी टैंकर BWTYR कल मुंबई पहुंच सकता है, वहीं दूसरा टैंकर BWELM के 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। यमन के हौसियों द्वारा इसराइल पर किए गए पहले हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतें आज 115 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। इस हमले से पश्चिम एशिया में ईरान के साथ अमरीका इसराइल संघर्ष और बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमत 2.7% बढ़कर 115.66 डॉलर हो गई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कल काठमांडू जिला न्यायालय ने 5 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। श्री ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पिछले साल सितंबर में हुए जंजी विरोध प्रदर्शन को दबाने में कथित असंलिप्तता के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। इन प्रदर्शनों में 76 लोग मारे गए थे। नवगठित बालेन्द्र शाह सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में प्रदर्शनों के लिए गठित जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के निर्णय के एक दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई। कुवैत के विद्युत जल और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि ईरानी हमले में उसके बिजली और जल विलवणीकरण संयंत्र में स्थित सेवा भवन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे एक भारतीय कर्मचारी की मृत्यु हो गई और भारी नुकसान हुआ है। मंत्रालय की प्रवक्ता फातिमा अब्बास जौहर हयात के अनुसार ये घटना कल शाम हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामजी का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल के 6ठे दिन रायपुर में तीरंदाजी, हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि कुश्ती प्रतियोगिताएं सरगुजा में जारी रहेंगी। एथलेटिक्स स्पर्धाएं आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में शुरू होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।